इंतजार हुसैन उर्दू अदब का वो रक्षिंदा सितारा जो आसमान अदब से टूटकर बिछड़ने वालों की फहरिस्त में शामिल हो गया। इंतजार हुसैन 2 फरवरी 2016 को खालिके हकीकी से जा मिले। उनके इंतकाल की खबर अदबी हलकों में दुख और अफसोस के साथ सुनी गई। लगभग एक सदी का सफर करने वाले इंतजार हुसैन शायकीन अदब को अपनी मजीद तहरीरों के मुंतजर ही छोड़ गए। इंतजार हुसैन उर्दू अदब का वो मायानाज नाम जिन्हें सन 2013 में बरतानिया के बड़े अदबी अवार्ड के लिए नामजदगी मिली। उन्होंने 5 नावल और 7 कहानियों के मजमुए लिखे और 50 साल से ज्यादा के अरसे में उर्दू और अंग्रेजी के अखबारात से वाबस्ता रहे। 1923 में हिंदुस्तान में पैदा होने वाले इंतजार हुसैन ने उर्दू और अंग्रेजी लिटरेचर में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। उन्हें एक लेजेंड का मुकाम हासिल हुआ। उन्होंने लातादाद एजाजात और इनामात हासिल किए। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सितारे इम्तियाज से नवाजा। 2014 में उन्हें फ्रांस का शहरी एजाज भी दिया गया। उनका नावल बस्ती उर्दू अदब के बड़े नावलों में शुमार होता है और बस्ती समेत उनकी कई कहानियों और नावलों के अंग्रेजी तर्जुमे भी हो चुके हैं। हिंदुस्तान से 1947 में पाकिस्तान हिजरत करने वाले इंतजार हुसैन की कहानियों का मरकजी मौजू भी हिजरत ही करार पाया। 10 जनवरी 2016 की इतवार की दोपहर मेरे लिए खुशबख्ती लेकर आई जब मैं इंतजार हुसैन से मुलाकात के लिए लाहौर में वाके जेल रोड के उनके घर के दरवाजे पर घंटी बजा रहा था। किसी पड़ोसी ने इतला दी कि बिजली गई हुई है, आप दरवाजा खटखटाइए। और दरवाजे पर दस्तक सुनते ही वास्केट कोट में जेब तन शफीक और मोहतरम चेहरे को सरापा इंतजार पाया। ये इंतजार हुसैन थे जो हमारे ही मुंतजिर थे। तकरीबन 2 घंटे की मुलाकात में मैंने इंतजार हुसैन से बहुत सी बातें की और बहुत से सवालात भी किए, मगर मुझे मालूम नहीं था कि उनकी जिंदगी की ये आखिरी रिकॉर्डिंग अब मेरे पास एक सरमाए के तौर पर महफूज रहेगी। इंतजार हुसैन से की गई ये आखिरी मुलाकात किसी भी मीडिया से की गई उनकी ये आखिरी रिकॉर्डिंग है। हमें आज ये सआदत हासिल हो रही है कि हम इंतजार हुसैन की इस आखिरी रिकॉर्डिंग की झलकियाँ आप तक पहुंचा रहे हैं।
आज के दौर में कोई एमए उर्दू करे तो उसके लिए मुलाजमत और माश का क्या मुस्तकबिल
है? एक तो टीचिंग का शोभा है, फिर ये रेडियो है, टेलीविजन है, तो इसमें भी तो ये मसला नहीं होता है। आप उर्दू के हैं तो उर्दू के क्वालिफाइड आदमी की जरूरत पड़ती है मुख्तलिफ शोबों में। और जाता जाता पहले एक मजमा जो मैं गया तो मैंने देखा कि मुसलमान लड़कियां टीवी में बहुत है। जहाँ जाओ सहारा वाले इंटरव्यू करने वाले आए, उनके साथ भी एक मुसलमान लड़की थी और उन्होंने उर्दू का अखबार भी निकाल रखा था। कहा कि हमारा अखबार तो बहुत। मैंने कहा ये बताइए, मैं ये देख रहा हूँ कि टेलीविजन पर अब मुसलमान लड़कियां बहुत नजर आ रही है। और कहा इसकी एक वजह है कि ये जो लड़कियां आती है ये उर्दू बोलती हुई आती है, बड़े चटाक पटाक बोलती है और ये बड़ी रवानी से बोलती है। कहा कि ये स्टाइल हमें सूट करता है, इसकी मांग ज्यादा है।
तो बहुत लोग माइग्रेट करके कनाडा, यूरोप, अमेरिका इन जगहों पे गए हैं, आपको कुछ उम्मीद है कि वहाँ भी कुछ उर्दू उनके कुछ काम आएगी?
उनके काम आएगी, आना तो चाहिए ना। ये देखिए, इसे कोई इस हुकूमत को इस जबान को हुकूमत का की सरपरस्ती हासिल नहीं है। कौमी जबान कहते हैं और कौमी जबान डिक्लेयर भी कर दिया, उसने जोर के साथ कहा कि इसे नाफिज कर दें और वो रिटायर हो गया। उसके बाद अब ये कर रहे हैं और नाफिज नहीं होगी, ये हमें पता है। लेकिन ये जबान अपने जोर पर बढ़ी है। अगर यूनिवर्सिटियों में गई है ये वहाँ, तो इसमें हुकूमत का कोई कमाल नहीं है, बल्कि हुकूमत पर यह करती रही है कि इकबाल चेयर हो या उर्दू चेयर हो, वो कहते हैं इसे पाकिस्तानी लिटरेरी चेयर बना दीजिए। मतलब ये कि उर्दू को छोड़े तो, लेकिन ये अपने दौर पे गई है, जहाँ भी गई है।
इंतजार हुसैन साहब, आप बुनियादी तौर पर नावल निगार, अफसाना निगार हैं और उर्दू के मुसन्निफ हैं, फिर ये अंग्रेजी और उर्दू के अखबारात में आपके कॉलम भी कुछ अरसे से नजर आना शुरू हुए, तो ये उर्दू से अंग्रेजी के कॉलम लिखने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ?
एडिटर थे एक अखबार के, अंग्रेजी अखबार के, उन्होंने कहा तुमने किसी जमाने में अंग्रेजी में कुछ कॉलम लिखे थे। मैंने कहा वो जमाना खत्म हो गया, अब तो मैं अंग्रेजी जबान भूल गया हूँ। क्या कहने याद कर लीजिए, मैंने वहां लिखना शुरू किया कलम। तो थोड़े दिनों के बाद डॉन के एडिटर थे उस वक्त, अब तो इंतकाल हो गया उनका, अहमद अली खान, इनके शोर हाजरा मसूर के, तो उनका पैगाम आया कि भाई आप डॉन में लिखा करें। ہمیں ایک ایسے کالم کی ضرورت ہے جو ادب ادب اردو ادب کے متعلق بھی باتیں ہوں گی. تو میں نے کہا ابھی تو میں نے یہ جوائن کیا ہے, میرے دوست کہیں گے کہ یہاں سے آ کے اسے لفٹ ملی تو چلا گیا, لیکن تھوڑے دنوں بعد اس اخبار کا حال خراب ہو گیا. تب میں نے جب دوبارہ ملاقات ہوئی انہوں نے پھر تقاضا کیا تو میں نے کہا اب میں حاضر ہوں آپ کے لیے. تو وہاں پھر مدتیں خاصے سال گزارے میرے.
کس سن کی بات ہے انتظار صاحب؟
ابھی میں نے بچے جوائن نہیں کیا تھا اس سے پہلے کی, اور انہوں نے آ کر دو تین ہفتوں کے بعد کہا کہ تمہارا اپوائنٹمنٹ ہو گیا ہے.
انتظار صاحب, آپ پاکستانی افسانوں کا ایک مجموعہ بھی ترتیب دے چکے ہیں آصف فروخی کے ساتھ, حال ہی میں شائع ہوا ہے سنگ میل سے. پاکستانی ادب اور پاکستانی افسانوں کے انتخاب کا خیال کیسے آیا, اور ان کا انتخاب کرتے وقت پہلی چیز کیا آپ کے مد نظر تھی؟
منتخب افسانے, ان میں کوئی بھی نقطۂ نظر ہو وہ آنے چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے زیادہ. تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانی افسانے ہیں, تو میں نے کہا میں تو اردو کوئی جانتا ہوں, تو میں نے آصف سے ملتقی کیا کہ تم سندھی بھی جانتے ہو اور پنجابی سے بھی تمہارا رابطہ ہے, تم ذرا زیادہ کشادہ ذہن کے آدمی ہو, یہ جو شعبے ہیں ان کی سندھی میں کون سی کہانی لکھی گئی اچھی, پنجابی میں کون سی ہے, تو ہم دونوں نے مل کر وہ بنایا.
اردو کے مایا ناز مصنف انتظار حسین 2 فروری 2016 کو خالق حقیقی سے جا ملے, 10 جنوری 2016 کو ان کے لاہور کے گھر پر کی گئی ملاقات کے دوران میں نے جو ریکارڈنگ کی تھی ابھی آپ اس کی جھلکیاں سن رہے تھے, جو کسی بھی میڈیا آؤٹ لیٹ کو دیا گیا ان کا آخری انٹرویو تھا.